الحمدللہ شروع کرتے جو آپ کے نصیب میں آپ کو وہی ملے گا. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کا کچھ نقصان نہ ہوگا. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے یہ 281. اور مفسرین کے مطابق کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ قرآن پاک کی آخری آیت ہے. اس کے چند ہی دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اگر ہم اس آیت پہ غور کریں اور اپنے اس سال کے رمضان کے ٹاپک تقویٰ کو سامنے رکھیں تو وتقو کا لفظ تقویٰ ہے. تقویٰ ہم اس پہ بہت کچھ کر چکے باتیں. ہم نے تقویٰ کے 12 رنگ بھی دیکھے, پھر مزید آج صبح اس میں ہم نے کچھ اور رنگ دیکھے, اور تقویٰ ہوتا کیا ہے اس کی ہم نے 20 سے 25 مختلف تعریفیں دیکھیں. آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ تقویٰ حاصل کیسے کیا جائے. اصل بات تو یہ ہے نا, آپ دیکھیے کہ کوئی آپ سے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے, یہ شینگلیئر بڑا اچھا ہے, بڑا خوبصورت ہے, یہ بجلی بہت کم لیتا ہے, اس کی روشنی بہت اچھی ہے, اس کو اندھیرے میں بھی رکھ دیں تو روشنی ہو جاتی ہے, تو سن کے جہاں ہماری رال ٹپکے گی وہاں دل میں ایک سوال بھی تو آئے گا نا کہ یہ ملتا کہاں سے ہے. تو جب ہمیں کسی بھی چیز کا پتہ چلے اور ہم اس کو لینا چاہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لائیں گے کہاں سے. تو انشاءاللہ ہلکی پھلکی سی بات کریں گے, باتیں وہی ہوتی ہیں جو پہلے ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ایک لڑی میں پھروئی بھی نہیں ہوتی. تو ہم دیکھیں گے کہ تقویٰ کو حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع کیا ہیں. مثال اس کو یوں لے لیجئے کہ پیچھے ہم نے اتنی بات کی تقویٰ یہ ہے تقویٰ وہ ہے, تو کیا مسلمانوں کے پاس بھی تقویٰ ہوتا ہے؟ کافر کے پاس بھی ہوتا ہے؟ یہودی کے پاس بھی ہوتا ہے؟ دل میں ایک سوال آتا ہے نا. تو پہلا سبب نوٹ کر لیجئے, اس سارے سوالوں کا جواب اس میں آ جائے گا کہ تقویٰ حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے. آپ نان مسلمز کو کوئی بھی اچھا کام کرتے دیکھتے ہیں نا تو یاد رکھیے, یا تو وہ ہیومینٹی کی کاز پہ ہوتا ہے یا دنیا میں ظاہری طور پر امن اور امان قائم کے لیے کرنے کے لیے ہوتا ہے. نان مسلم یا اللہ کا انکار کرنے والا جب بھی کوئی نیکی کرے گا وہ آخرت کے لیے نہیں کرے گا, وہ جہنم سے بچنے کے لیے نہیں ڈرے کرے گا. اور وہ ساری تعریفیں ذہن میں رکھ لیں جو اگر آپ پیچھے سے سن چکے ہیں یا نہیں بھی, تو تقویٰ کمانی, بچنا, حفاظت کرنا, خود کو حرام چیزوں سے روکنا. مثلا اگر ایک شراب نہیں, ایک کافر شخص شراب نہیں پیتا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے اس لیے اس نے شراب نہیں پی. اس کی طبیعت میں نہیں, اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا, اس کی اسمیل اچھی نہیں لگتی, یا وہ ڈاکٹر سے منع کیا یا وہ ہیلتھ کیئر اس کیوریس ہے. اللہ کے خوف سے کسی چیز کو چھوڑنا ہے نا تو وہ تقویٰ ہے. تو ایمان اور تقویٰ لازم اور ملزوم ہے. جس دل میں ایمان ہوگا نا وہاں تقویٰ ضرور ہوگا. اور اس کی دلیل دیکھیے سورۃ بقرہ کی پہلی آیتیں, آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہدایت کا ذریعہ ہے یہ قرآن متقیوں کے لیے. کون متقی؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے, کسی کو غلط کام کرتا دیکھ کے کہتے ہیں تمہیں کیا پتا وہ اندر سے کتنا نیک ہے. ہمیں تو ضرورت بھی نہیں ہے پتہ لگانے کی, لیکن یاد رکھیے ایمان ہے تو نیکی کام آئے گی, اس کے علاوہ نہیں آئے گی. ایمان والے سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے گا, کفر سے یا کافر سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ سے ڈرے گا. لوگوں سے ڈر سکتا ہے, سزا سے ڈر سکتا ہے, نرم دل کا ہوگا تو ہو سکتا ہے لوگوں کی ناراضگی سے ڈرے, لیکن ادروائز وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوتا. اس کی ایک اور دلیل بھی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے, 102. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور تمہیں موت صرف اور صرف مسلمان ہونے کی حالت میں آئے. अब आप देखिए यहाँ क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यह ऐसे भी तो हो सकती थी ना, या अय्युहन्नासु तक्कुल्लाह आ सकती थी ना, आमनू कहकर बता दिया कि मरते दम तक अगर कोई अल्लाह से डरता रहेगा तो उसकी दलील ईमान है। और आप देखते हैं कि नॉन मुस्लिम जब मुस्लिम होते हैं तो एक अजीब सी चमक उनके चेहरों पे आ जाती है ना, एक खास, वो मैं समझती हूँ हम बोन मुस्लिम्स के चेहरों पे भी नहीं है, हमारे अंदर वो एक खूबसूरती और एक नरमी और एक ऐसे लगता है जैसे घुलापन नहीं मिलता, क्योंकि हमने उस ईमान को अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ा होता है। तो लिहाजा सच्चा ईमान इंसान को अल्लाह से डरना सिखा देता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि सूरत मायदा की आयत नंबर 88, इसकी एक सिर्फ रेफरेंसेस लिख लिया करें, कुछ ना और लिखें, आप देखेंगे कि बाद में जब आप इनका तर्जमा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें आयत 88 सूरत मायदा में अल्लाह ताला कहते हैं, वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, और जो तुमको अल्लाह ने हलाल और तैयब दिया है उसमें से खाओ, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, वो अल्लाह या वो रब जिस पर तुम ईमान लाते हो। तो ये रेफरेंसेस बहुत सारे होंगे, लेकिन बात को समझने और समझाने के लिए पता चल गया कि तकवा के हासिल करने के लिए ईमान बहुत ज़रूरी है। दिल में ईमान आ जाएगा, इंसान आप देखिए कि जैसा भी हो एक वक्त आएगा कि वो ज़रूर अल्लाह से डरेगा, और अगर कोई बहुत नरम दिल भी शख्स है तो हो सकता है कि आखिर में वो अपने आप को बुरा कर ले। इसलिए जो चीज़ मुझे और आपको बढ़ानी है ना, वो ईमान है। आपको तकवा एक दौलत लगा, हमने इस पे एक दर्स किया था, तकवा की दौलत। आपको तकवा दौलत लगती है, जैसे आपको सोना एक दौलत लगती है, डॉलर एक दौलत लगता है। आप कहते हैं कि मुझे ये दौलत लेनी है, क्या करूं? ईमान लो। अब सवाल पैदा फिर होगा कि ईमान कहाँ से लो? तो ईमान लेना है तो अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की किताब, अल्लाह के नामों पे गौर, असमाल हुस्ना पे तदब्बुर, ये सारी चीज़ें ईमान वाली होती हैं। कभी कोई खुशी आती है तो उस पे हमारे ईमान की हालत बढ़ जाती है, कई गम आता है उस मौके पे गम बढ़ जाता है। और आप याद रखिए कि ईमान एकदम नहीं आता, इसके दर्जे होते हैं। अगर आपने तफसीर से कुराने वक्त पढ़ा है तो सूरत मायदा की आयत 93 में बड़े खूबसूरत स्टेप्स हैं, असल में तो वो शराब के हराम होने के स्टेप्स हैं, लेकिन हर गुनाह में यही होता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, लैस अलल लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाती जुनाहुन, ईमान लाने वाले, ईमान लाकर नेक अमल करने वालों पर इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं। किस में? कि ताइमू फी मताइमू इज़ा मत्तकू, जबकि उन्होंने कुछ खा लिया, कुछ गुना, कुछ ऐसी चीज़ हराम की पी ली, और इसके बावजूद वो अल्लाह से डरते रहे। वहाँ मनु वामिलुस सालिहाती, 3 दफ़ा इस आयत में अल्लाह ताला ने इत्तकू, आमनू, अमिलु सालेहात की, और आखिर में अहसनू। पूरी आयत अगर आप एक स्ट्रेच में देखें तो आपको क्या लगेगी कि इन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इस चीज़ पर कोई गुनाह नहीं। जो कुछ वो खा पी चुके, यानी तौबा से पहले जो शराब पी चुके, हराम खा चुके, कोई हर्ज नहीं, जबकि वो अब तकवा अख्तियार करें और ईमान लाकर और नेक अमल करें, फिर तकवा अख्तियार करें और ईमान लाएं, फिर तक वो इख्तियार करें और एहसान करें, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। ये दर्जा होता है, सबसे छोटा दर्जा तकवा का जो होता है ना, वो बिल्कुल अल्लाह इस वॉचिंग में है। और आखिरी दर्जा इसका होता है एहसान। कहीं ना कहीं आगे जाके आपको ये सारे मरतबे भी लिखा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो एहसान क्या होता है? कान न कदरा हो, कोई इलायची या कोई गले में ना खराश आ गई। हम जब भी कोई गुनाह छोड़ना चाहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हम बड़े फख्र से कहते हैं हमने तो कभी गुनाह ही नहीं किया, हमने तो कभी गाना सुना ही नहीं, हमने तो कभी म्यूजिक सुना नहीं। तो ये कौन सा तकवा है? ये तो अल्लाह की रहमत से नहीं सुना ना। असल जो इंसान का जिहाद है ना, वो ये है कि मैं कोई काम करता था, अब अल्लाह के लिए छोड़ दिया। असल जिहाद जो है बहुत आसान है, किसी आलिम के घर पैदा हुए, सारी शुरू से आप नेकियां करते रहे, बहुत अच्छी बात है, आपने गुनाह नहीं चखा। क्योंकि आप देखिए, कपड़ा सफ़ेद होता है ना, नया कपड़ा, उसका नयापन और उसकी सफ़ेदी का क्या कहना। आप दाग लगे हुए कपड़े को धो ले, ब्लीच डाल लें, सफ़ेद भी हो जाएगा, लेकिन वो नयापन नहीं आता, बहुत मुश्किल होती है उसमें। कहीं आप स्टार्च लगाएंगे, खींच के इस्त्री करेंगे, उसको चमकाएंगे, फिर कहीं लगेगा कि ये नया, धुले हुए कपड़े का पता चल जाता है। इसी तरह वो इंसान जो गुनाह कर कर के रूह पे कचोकी लगा के पलटता है, पता तो लग जाता है, उसका दिल खुद ब खुद आंखें भीग जाती हैं कि अल्लाह मैंने क्या ज़िंदगी बसर की। कई साथी ऐसे हैं जब अल्लाह के खिलाफ से, अल्लाह की किताब से उनका ताल्लुक जुड़ता है तो फिर वो रोते हैं, कहते हैं हमें पिछली ज़िंदगी पे रोना आता है, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। लेकिन कोई बात नहीं, जो तौबा करके आता है अल्लाह ताला को उस पर प्यार भी ज़्यादा आता है। इसलिए कभी कोई बड़ा से बड़ा गुनाह कर चुका है ना इंसान, तो परेशान ना हो। आप देखिए कि अम्बिया कराम की ज़िंदगी को देखें, आदम अलैहिस्सलाम नाफरमानी कर चुके थे, फल चख लिया, अल्लाह ने उसके बाद नबूवत दे दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक झूठ बोल चुके थे, एक झूठ था इसलिए याद है, हम तो 100 बोलते हैं तो हमें याद नहीं रहते, और उनका झूठ भी ऐसा ही था जिसको तौरिया की किस्म कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसके बाद नबूवत भी दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल तक जैसा गुनाह हुआ, फिर नबूवत मिली ना। अंबिया कराम की ज़िंदगी ये बताती है कि बड़े से बड़े गुनाहगार को भी ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और हमारा अंदाज भी लोगों का दिल तोड़ने वाला नहीं बल्कि लोगों का दिल जोड़ने वाला होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक दफ़ा मेरे पास एक औरत आई, इंतहाई हसीनो जमील, बहुत खूबसूरत थी। कहने लगी कि अबू हुरैरा, मैंने हर गुनाह किया, जिना भी और बदकारी भी और जो भी गुनाह कोई हो सकता है वो किया है, अब मुझे मलाल हो रहा है कि मैंने क्या किया, हल्ली मिन तौबा, मेरी कोई तौबा है? कहने लगे, तेरी तौबा कैसे हो सकती है, एक ही जिना बहुत बड़ी बात है, तूने तो बहुत सारे किए। इन्होंने उनको कहा कि तेरी तौबा नहीं होती। तो कहते हैं कि वो औरत मेरे पास से हटी और रोती हुई अपने आप को मुखातिब करके कहने लगी कि जिस्म अफसोस है तुझको, तू आग में जलने के लिए बनाया गया, और वहां से चली गई। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात जब हुई तो अबू हुरैरा ने ये वाक्य बयान कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बुरा लगा, आपने कहा अबू हुरैरा तूने उस औरत को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया, तूने उसको उम्मीद क्यों नहीं दिलाई? फिर अबू हुरैरा को एहसास हुआ कि मेरे से गलत फैसला हो गया, फिर गए और उस औरत को ढूंढने लगे जाके गलियों में कि किधर है, ताकि मैं उसको अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाऊं। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, बल्कि याद रखिए बस दफ़ा अल्लाह ताला हमसे बड़े बड़े गुनाह इसलिए भी कराता है कि खूब गिल्ट पैदा हो और बाद में हम खूब बड़ी बड़ी नेकियां करें। वहशी का नाम आपने सुना होगा, हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कातिल, ग़ज़वे उहद में इसने हज़रत हमजा को शहीद किया था, कुफर पे था, और ख़ुद अपनी कहानी सुनाते हुए रोया करते थे और चीखे मारते थे, कहते थे मुझे ना तो इस्लाम से कोई बैर था, कुफर इस्लाम मेरे दिल में कुछ नहीं था, मैं एक गुलाम था, गुलामी में पिसा हुआ एक शख्स था, मुझे इस्लाम से किसी से कोई लेन देन नहीं था, ना मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बैर था। मुझे तो ग़ज़वे उहद के मौके पे एक काफिर या इनके मालिक ने कहा कि अगर कोई हज़रत हमजा को मार दे तो उसको इतना इनाम मिलेगा। कहते मैं सिर्फ पैसे के लालच में कि चलो मुझे कुछ पैसा मिले, मैं गया और मैंने हज़रत हमजा को शहीद कर दिया। और उनको शहीद करना असल में अल्लाह के नबी को दुख देना था। तीन रिश्ते थे अल्लाह के नबी के, उनके साथ चचा भी थे, दूसरे एक भाई भी थे और दोस्त भी थे वो, कि इतना आपको सदमा हुआ कि आपने उस औरत हिंदा को कहा कि मेरे सामने ना आया करो, क्योंकि उसने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था, दुख दिया था, कहा मुझे तुम सामने आती तो मुझे अपना चचा याद आता है। आपने बददुआ तक कर दी काफिरों के लिए कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि वो वहशी जब मुसलमान हुए, अल्लाह ने आखिर बाद में उनको इस्लाम नसीब किया, तो रोया करते थे, कहते थे ये क्या बात है, मैंने इतना बड़ा सदमा अल्लाह के नबी को दिया। फिर अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह जिस तरह मेरे से ये गुनाह हो गया ना, आप मुझे तौफीक दे कि मैं इसका कफारा अदा करूँ। और आपको पता कि इनसे कफारा अल्लाह ने कैसे लिया, मुसलमा कज़्ज़ाब को इन्होंने कत्ल किया था, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया था। कहा करते थे कि ये मेरा उस गुनाह का कफारा है कि मैं एक झूठे दाइये नबूवत को या नबूवत के दावेदार को कत्ल करूं। तो अपनी जिंदगी में खुद देखिए, जिस जिस्म के उस से जो गुनाह कर चुके हैं ना, उससे वही नेकी कराएं। माजी में आपकी आंखों ने बहुत गुनाह किए हैं ना उल्फुल देख कर, तो अब इन आंखों से नेकियां कराएं। जुबान से गुनाह हुए ना, तो जुबान से नेकियां कराएं। हाथों से, कानों से, चेहरे से, जिस्म से, जिस्म के जिस हिस्से से दुख हुए ना, उन सब के जरिए से आप नेकियां कराइए, फिर आप देखेंगे कि पता चलेगा। बस अब इंसान पूरी पिछली जिंदगी में गुनाह करता है, ऐन तौबा करता है, मौत आ गई, नेकी का मौका ही नहीं मिला। ये जो आयत आपके सामने रखी ये बिल्कुल ऐसी थी कि जब शराब की हुरमत का मौका आया और कुछ लोग ऐसे थे कि जो पहले शराब पीते थे, जुआ खाते थे, कुछ ना कुछ करते थे, तो जब ये शराब हराम हो गई तो लोग आके सहाबा किराम ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि हमारे उन मुसलमान भाइयों का क्या बनेगा जो शराब पीते, जुआ खेलते और इसी हालत में मरे गए। तो उस पर रियायत उतरी थी कि अगर ईमान मौजूद है तो अल्लाह ताला उनके ईमान की वजह से ये गुनाह उनके माफ़ कर देगा। और याद रखिए कि ईमान ही की तो वजह से आखिर में जहन्नम से रहाई होगी ना। तो सबसे बड़ी दौलत जो आपको ईमान की है ना, वो क्या है कि आप अपने अंदर ईमान पैदा करें। फिर इसी तरह सूरत मायदा की आयत 65 में अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वलवन अहलल कुरा सॉरी वन लोहल किताब आमनु वत्तको, और अगर अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते लकफ्फरना अनहुम सय्यातिहिम, अलबत्ता हम दूर कर देते हैं उनसे उनकी सय्यात, वला अदखलन्नाहुम जन्नत नईम, और हम उनको नेमतों वाली जन्नतों में दाखिल कर देते। तो ईमान बहुत बड़ी दौलत है। इसी तरह सूरत अल अराफ की आयत 96 को भी नंबर नोट कर लीजिए कि वलवन्नाहलल की पूरा आमनु वत्तको वत्तको लफतहना अलैहिम बरकात मिनस्समा। अब ये सिर्फ तकवा पे दर्स होता ना सिर्फ, तो इस वक्त घंटों बात होती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली तो नहीं, अब तो 3-4 माह गुजर के USA ट्रिप के दौरान एक लेक्चर दिया था रिस्क की कुंजियाँ, वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा इंशाल्लाह सुनर और लेटर आप सुनिए। 15 मुख्तलिफ तरीके थे हाउ टू इंक्रीज योर मनी, और उसमें एक तकवा था। आज हमारे यहाँ क्या तसव्वुर है, हलाल से तो पूरी नहीं पड़ती, सच बोलेंगे तो खाएंगे कहाँ से, सूद के बगैर काम नहीं चलता, ये कहते हैं ना। और अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि अगर आमनु व तकौ लफतहना अलैहिम बरकात मिनस्समा, ईमान और तकवा होगा तो आसमान से बरकतें उतरेंगी। ठीक है नीचे से आपके हाथों में हजारों डॉलर अब नहीं आ रहे, चंद सौ आ रहे हैं, लेकिन उन चंद सौ में इतनी बरकत होगी जो हजारों में नहीं होगी। और इसकी गवाही हमारे बहुत सारे साथी देते हैं कि जो किसी न किसी हराम बिजनेस में थे पहले, सुकून नहीं था, इत्मीनान नहीं था, जो ही वो छोड़ा माल कम हो गया, लेकिन खैर हुई। एक आलिम की मैं स्पीच सुन रही थी तो सऊदी अरब की बात बता रहे थे कि वहाँ एक शख्स उनको मिला तो उसने कहा कि इमाम साहब मैंने आपसे अपनी एक बात शेयर करनी है कि मेरा बहुत बड़ा काम था लेकिन उसमें सूद था, इतना माल था मेरे पास इसके बावजूद हर वक्त मैं कर्ज में था। और ये एक जुमला अगर आज आप लिख सकें, ये मौजू तो वो नहीं है लेकिन तकवा में सब कुछ आता है कि सूद और कर्ज साथ साथ। जिस मामले में, जिस इंसान की जिंदगी में सूद का लेन देन आ जाएगा ना, वो हमेशा मकरूज रहेगा। बल्कि आम लोग तो चंद सौ के मकरूज होते हैं ना, वो हजारों और लाखों का मकरूज होता है। वो मिलियनेरियन है ना तो मिलियंस का सूद उसकी गर्दन पे होगा। तो कहता है कि मैं हर वक्त मकरूज होता था, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं इतना कमाता हूं तो मेरा पैसा किधर जाता है। फिर अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मुझे समझ आई, मैंने वो सूद का माल छोड़ दिया, उसको लात मारी और कहता कि मैंने एक आम सी दुकान पे चंद हजार रियाल की जॉब शुरू की। कहता अब मेरे पास बाहर चंद हजार आते हैं लेकिन मैं खुश भी हूँ, मेरा सारा कर्जा भी उतर गया और मैं इत्मीनान से सोता हूँ। लफतखना अलैहिम बरकात मिनस्समा। नाराज करके लेना अल्लाह से नहीं लेना। माँ खुश होगी तो बच्चे को जो चीज देगी वो ज्यादा अच्छी होगी, या नाराज होके जो देगी वो अच्छी होगी। और गुस्से में पटक भी देती है ना माँ कभी बच्चे की जिद पे, तो साथ ही कहती है ले लो लेकिन अब मेरी मेरे से बात ना करना, चले जाओ यहां से, मुझे शक्ल ना दिखाना। तो क्या इंसान अल्लाह को नाराज करके रिस्क लेगा? नहीं, तकवा ईमान के साथ है। आपको अपने मर्दों में कोई कमी बेशी दिखती है, उनके ईमान पे बात करें। हमारा मसला यह कि जब अपने किसी मर्द को, जब हम अपने किसी मर्द को समझें कि सूद के मामलात में घिरावा देखते हैं, किसी का हो सकता है शराब का बिजनेस हो, कुछ भी होता है, हम जाके झट साने उसके उस फेल पे तनकीद करते हैं। आज यहाँ ये बात सीख के जाइए कि अगर कोई हराम कारोबार में भी पड़ा हुआ है तो उसके हराम को ना छेड़ें, ईमान को छेड़ें। ईमान वो फोर्स है जो बंदे से गुनाह छुड़ाती है, कुर्बानियां दिलाती है। रेत पे लिटाया गया और इंसान बेचैन न हुआ, बिलाल हबशी रेत पे तपाए जाते लेकिन अहद अहद पुकारते, क्यों? कि ईमान बंदे के अंदर कुव्वत पैदा कर देता है, बर्दाश्त पैदा कर देता है, और उसकी वजह से एक इंसान जो है वो अपने आप को अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइशों पर रोक लेता है। आज भी अगर ईमान होगा तो हराम छुटेगा, चार दिन का एक झटका तो लगता है जब हाथ से एक चीज छूट के दूसरी मिलती है, लेकिन ईमान उसको संभाल लेता है। तो लिहाजा तकवा के लिए ईमान लाजिम है। इसी तरह सूरत जुमर की आयत नंबर 10, इसका भी नंबर नोट कीजिएगा, कुल या इबादिल्लजीन आमनुत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कह दीजिए कि मेरे बंदो जो ईमान लाए हो अपने रब से डर जाओ, यानी रब से डरो ईमान की बुनियाद पे, और जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई है, और अल्लाह की जमीन वसी है, बेशक सब्र करने वालों को इनका अजर बेहिसाब दिया जाएगा। तो गोया के ईमान और तकवा साथ साथ, इतनी बात अगर हमें समझ आ गई ना, तो आप देख लेंगे कि बड़े से बड़े काम आसान हो जाएंगे। ईमान के साथ तकवा आ जाए, इससे खूबसूरत पर्सनैलिटी नहीं। आप इसको सिर्फ यहाँ तकवा के लिए ना लें, आपके बच्ची का रिश्ता आता है। बस वहाँ हम कहते हैं हमने तो बड़े दीनदार देख के दिए थे, बाद में पता चला कि वो तो बच्ची पे बड़ा जुर्म करते थे, धोखा हो गया। क्योंकि किसी को पूछें क्या हुआ तो हम कहते हैं जी दीन देख के देना, कहते हैं दीन क्या, हमने तो हाफिज देख के दिया था। अक्सर लड़कियाँ औरतें माएँ जब अपने दुख सुख करते हैं हमारे साथ तो ये बातें सुनने को आती रहती हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपने देखिए हाफिज लिया है, मैंने आपसे दीनदार की बात की है। तो कहते हैं कि हाफिज होने और दीनदार होने में कोई फ़र्क है? बैठे, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, प्लीज सिट। मैंने कहा कि जी बहुत बड़ा फर्क है, बंदा बास दफा मौलवी भी बन जाता है लेकिन दीनदार नहीं बनता, बहुत फर्क होता है। आप देखिए कि एक रस्मी दीनदारी होती है, किसी की अच्छी किरत है वो कारी साहब बन गए, किसी ने चंद सूरतें पढ़ ली हिफ्ज कर ली वो हाफिज कुरान बन गए, किसी को इमाम मस्जिद की जॉब मिल गई वो इमाम मस्जिद बन गए। लेकिन असल जो दीनदारी है वो तो दिल के साथ है। पांच वक्त नमाज पढ़ाने वाला भी बाज दफा गुनाहों से नहीं रुकता। मस्जिदों में लोग नमाजी बन के निकलते हैं, कारोबार में आते हैं तो धोखेबाज बनते हैं। वो कहते हैं लो जी ये हमारा बिजनेस है, नमाज हमारा नमाज है और ये सूद हमारा कारोबार है। तो जब भी कभी आपको अपने घरों में किसी का रिश्ता ढूंढना है तो दो चीजें देखिएगा, ईमान और तकवा। जिसको अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आए जिसके दीन और अखलाक को तुम पसंद करो तो रिश्ता कर दो। तो माँ बाप अक्सर गलती खा जाते हैं सिर्फ एक चीज देखकर। बहरहाल ईमान की बातें तो होती रहेंगी, हमने इसको बढ़ाना है और इंशाल्लाह इसके लिए हम सब ने नियत की है दौरे कुरान की। आप खुद देखेंगे जिसकी चीज होती है उससे ही मिलती है, इंशाल्लाह उस पर लेंगे। दूसरा सबब जिससे इंसान अपना तकवा बढ़ा सकता है, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास पैदा कर सकता है, वो है नमाज, बुनियादी रुकन इस्लाम का। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि हम नमाज की अहमियत से इनकार करते हैं, हमें पता ही कुछ नहीं। नहीं, मारूफ रिवायत हम में से हर एक ने सुनी हुई है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, पहली चीज जिसका बंदे से क़यामत के दिन हिसाब लिया जाएगा वो उसकी नमाज होगी। अब ये रिवायत किस में, यानी इबादात के अंदर, हकूकुल्ला में, ये निसाई की रिवायत है, नासरुद्दीन अल्बानी ने इसको ठीक कहा, मामलात की बात नहीं है। इबादात में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। कुरान पाक में तकरीबन 700 बार नमाज का तस्करा अहकामात है, और वो नमाजें क्या देती हैं, हम कहते हैं सवाब, नहीं वो बाद की बात है, नमाज तकवा देती है। आप बताइए कि मैंने अभी नमाज पढ़ी, आपको पता है कि मैंने उसमें क्या पढ़ा? मैं उसमें गाने बोल दूँ, स्टोरीज बोल दूँ, मैं उसमें गुनगुनाऊँ, कुछ करूँ, मुझे पता है ना, और अल्लाह को पता है। मैंने नमाज में अगर कोई चीज़ अच्छी की, कोई अच्छा लफ्ज़ बोला, कोई लंबी सूरत पढ़ी, तो ये मेरा और रब का ताल्लुक है। तो तकवा है ही क्या कि बंदे का अल्लाह के साथ तकवा है। तो नमाज को बढ़ा लें। आपको अगर किसी में कोई कमी दिख रही है ना, जैसे अभी बातें हो रही हैं गुनाह की, तो उसका ईमान ठीक कराएं, उसकी नमाज शुरू कराएं। नमाज का तो लाजमी मामला क्या आता है कि इंसान से गुनाह छुड़ाती है, और वही सूरह बकरा की आयत नंबर 2-3 में अल्लज़ीन युमिनूना बिल गैब के बाद क्या है, वयुकीमुनस्सला इन्नस्सलात तन्हानिल फख्शा वल मुनकर, 21वें पारे की पहली आयत, कि नमाज बेशक बेहयाई और मुनकर से रोकती है। तो नमाजों को आम करना है। अब रोजे आ रहे हैं, रोजा तो रखा, नमाज ना पढ़ी, ये कौन सा रोजा है? सारा दिन फिरते रहे इधर उधर, मारे मारे, कभी पढ़ने के नाम पे, कभी जॉब के नाम पे, असर के करीब मगरिब के पहुंचे, फटाफट दो चार टकरे मार के जोहर की नमाज पढ़ ली, फिर असर पढ़ ली। अल्लाह को जरूरत नहीं है, ना अल्लाह को हमारे रोजे की जरूरत, ना अल्लाह को इन टकरों की जरूरत है। हम अपने पास रखें, अल्लाह कहते तुम अपने पास रखो। हम देखिए कि नमाज की रूह नहीं समझते ना, इसलिए हमारे अंदर नमाजों के बावजूद भी तकवा नहीं आ रहा। पढ़ लेते हैं लेकिन तर्जमा नहीं पढ़ते। इसके लिए मैं सोचती हूँ कि अगर सिर्फ एक नमाज, चले एक से शायद सोच ना पूरी जमा, आप दिन की 5 नमाजें उर्दू में पढ़ें, आप एक तजुर्बा से कर लें, नफिल नमाज की नियत कर लें, बिल्कुल वैसे ही नमाज पढ़ें जैसे एक्शंस के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़ें ना उसको उर्दू में पढ़ें, जैसे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी, इसके तर्जमे को उर्दू में पढ़ लें, सूरत फातिहा पढ़ें तो उर्दू में पढ़ें, फिर उसके बाद अब रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, दो सारी उर्दू में पढ़ें, सिर्फ 5 नमाजें आप उर्दू में पढ़ के देखें, आपको लग पता जाएगा कि ये नमाज क्या थी। और हमारा हाल क्या है, सुभानक अल्लाह पे जो दिमाग चलना शुरू होता है तो सलाम अलैकुम एक वो जैसे ऑटो ऑटो ऑटोमेशन में डाली होती है ना, वो लिस्ट में डालते हैं ना उसको, क्या कहते हैं कि जो हमारे एक लिस्ट में डाल देते हैं और फिर एक के बाद एक ऑडियो चलती रहती है, एक से एक चलती रहती है। हमारी नमाजें बाज दफ़ा ऐसी हैं, हालांकि आपको पता है कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि नमाज बंदे के लिए अल्लाह के सामने जाने का एक जरिया बनती है। अगर आप सूरत अल-अनाम की आयत 71 से 72 देखें तो उसमें कहा गया, कुल कह दीजिए, इन्ना हुदल्लाही हुवल हुदा, असल हिदायत तो अल्लाह की हिदायत है, वो उमिरना और हमें इस बात का हुक्म दिया गया, लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन, कि हम रब्बुल आलमीन के आगे सर झुकाएं, मती और फर्मा बरदार हो जाएं, वन अकीम उस्सला तवत्तकू, और हम उसके सामने नमाज पढ़ें और उसका तकवा इख्तियार करें, वहुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और वही ज़ात है जिसकी तरफ हमें जाना है। हो सकता है आपको ये लगे ये तो बातें हमें सारी पता है, बचपन से हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन जरा देखें कि हमारी नमाजें कैसी हैं। आपने वो मशहूर वाक्य सुना होगा कि एक शख्स की हड्डी के अंदर तीर घुस गया था, अब वो चला तो अंदर गया, निकालते हैं तो चीखें निकलती हैं, इतने में नमाज का वक्त हुआ और उन्होंने कहा कि नमाज के दौरान कोशिश करना निकालने की, हो सकता है कि मुझे कम दर्द हो क्योंकि मुझे होश नहीं रहती इधर उधर की। और जब नमाज पढ़ी, सलाम फेर लिया, कहा तुम लोगों ने निकाला नहीं, उन्होंने कहा आप क्या बात करते हैं, हमने तो पहले रुकू से पहले निकाल लिया था। इसी तरह एक वाक्य मशहूर है कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था तो उसके आगे से एक मजनू दीवाना गुजरा, हाय लल्ला हाय लल्ला कहता हुआ, जब सलाम फेरी तो ये नमाज पढ़ने वाला उस पर बरस पड़ा कि तूने तो मेरी नमाज खराब कर दी, अपनी लल्ला को याद करते हुए कहने लगा, मैंने तो जो किया सो किया, लेकिन तुम बताओ, मुझे तो लल्ला की मोहब्बत ने इतना दीवाना किया, मुझे याद ही नहीं मैं कहाँ से गुजरा हूँ, तू कौन सी नमाज पढ़ रहा था कि उसमें भी तेरा मेरी तरफ ध्यान था, राइट। तो हमें तो सारी भूली बातें नमाज में याद आती हैं, कोई रखी हुई चीज इधर उधर ढूंढनी है ना, फौरन नमाज पढ़ लें, कटक से आपको याद आएगा चाबी किधर रखी हुई है, और बस उसमें इशारे भी करना शुरू हो जाते हैं कि बाद में भूल ना जाए। नमाज जी
होता क्यों ऐसे,
आज सुबह बताया एक बात आई थी इसमें, याद है आपको?
जी वही तकवा की वजह से डर और लगा, वो तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह,
मैंने उसमें बताया था, याद आ गया, जो अभी आपको भी दिखा देते हैं अगर दिल चाहेगा, कि हम जब तिलावत सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग पर इसका क्या असर होता है, तो उसमें एक चीज थी कि हम जब नमाज पढ़ते हैं ना या तिलावत सुनते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी आ जाती है, हमारी सोई हुई सलाहियतें जाग उठती है, तो सारी मेमोरी सही हो जाती है और वो बातें याद आती हैं, और ये सारे काम कराने में शैतान भी हमारा मददगार होता है। तो याद रखिए कि ये सब के लिए ज़रूरी है कि हम सब अपनी नमाजों को ज़िंदा करें। क्या इस रमज़ान में हमारी भी नमाज़ें पढ़ेंगे? एक दफ़ा कोशिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने नमाज नबी दोबारा पढ़ाई है, अभी हमारे पास सादुल खैर का ऑनलाइन कोर्स जो ख़त्म हुआ है प्रेफ रमज़ान का, उसमें पूरी नमाज नबी दोबारा करवाई गई है, इसी तरह नमाज के बारे में वर्कशॉप्स चलती रहती हैं, कोई एक सीरीज़ सुनिए और अपनी नमाज को ज़िंदा करें, और आप देखिए कि नमाज ठीक हो गई तो बाकी सारे काम खुद बहुत ठीक हो जाएंगे। आप खुद सोचे ना, किसी के लिए आपके दिल में मैल है, हो जाता है ना, जैसे कोई रिश्तेदार बहुत दिन ना मिले और इधर उधर से उसकी इधर उधर की बातें आप सुनते रहे, उसने आपके लिए ये कहा ये कहा, तो ना चाहते हुए भी मैल आ जाता है, फिर एक दिन आप उसके सामने जाते हैं, मिलते हैं, हाय इखलाम खा, गले मिलते हैं, प्यार, चाय पानी, आपको लगता नहीं ये तो वही है, ऐसे मुझे किसी ने कह दिया था, शुक्र है मैं इससे मिल पड़ी तो मुझे मेरा दिल साफ हो गया, होता कि नहीं होता। कहते हैं ना कि रिश्तेदारियां मिलने वालों से होती हैं, ना मिलो तो अपने भी बेगाने, मिलो तो बेगाने भी अपने। नमाज क्या है? अल्लाह से मुलाकात, मिलते रहेंगे, रोज बातें करेंगे, गुनाह हो गए, रो रो के कह रहे अल्लाह मगफिर ली ज़म्बी कुल्लहु वदिक्कहु जिल्लहु अव्वलहु आखिरहु बात ही ना हो। जो भी दुआएं आप पढ़ेंगे, अल्लाह माफ करेगा, फरिश्तों ये अपना बंदा है, आ गया माफिया मांग रहा है, जो माफ कर दो। कभी आप कहते या हय्यू या कय्यूम बिरहमति का अस्तगीस, माफिया मिल गई। और नमाज पढ़े और अल्लाह से मुलाकात ही ना हो तो फरिश्तों को क्या कहते हैं, रख दो इसको उधर। ये ऐसे ही जैसे कोई आपके घर आए, चक्कर लगाए आपके घर का, बगैर आपकी कोई बात सुने और कहे वापस चला जाए। आ तो गया, खाना पूरी हो गई। बाद लोग, कुछ लोगों की मजबूरी में आ जाते हैं शादियों में, दावतों में, बात नहीं करते आपसे, चले जाते हैं। तो आप कहते हैं आए तो थे, बात कोई नहीं करके गए। होता है ना ऐसा कभी रिश्तेदारियों में? तो क्या हमारी नमाजें ऐसी तो नहीं है कि जिसके अंदर हमारा हाल ये हो कि हम नमाज तो पढ़ें लेकिन फरिश्ते के अल्लाह जी ये आया तो था, ये आपसे कोई बातें तो नहीं करके गया। अल्लाह तो नमाज की सूरह फातिहा में हमें बुला रहा होता है कि हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जवाब आता है हमदनी अब्दी। आपने मारूफ रिवायत सुनी हुई है ना, मजदनी अब्दी उनसा इलाही अब्दी। हम सुनते ही नहीं और अपनी मर्जी से बातें कर करके सुन सुना के आ जाते हैं, तो फरिश्ते कहते होंगे ये अच्छा बंदा, बोल बाल के अपनी बात कहे हुए वापस आ गया। तो बात का खुलासा क्या है कि इस वक्त अगर हम इस पे फोकस करें कि नमाजों को जिंदा करना है। इसमें मैं खास तौर पे आप सब सिस्टर्स को कहूंगी, टीनेजर्स बच्चे, यंग लड़के 18 से नीचे, 16 15 14 के, ये वो उम्र होती है जब नई नई जवानी आती है, हर चीज बंदे को एक और ही चीज दिखती है। अब नमाजें भी जो हैं तो वो टकरों वाली नमाजें हैं। अगर आप माओ ने अपने जवान बेटों के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डाल दी ना, तो आप देखेंगे कि उनकी नमाजें जिंदा हो जाएंगी, क्योंकि ये नमाज ही उनको रोकेगी दूसरी चीज़ों से। आप अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, मत उनको उठते बैठते ताने दें, करते नहीं, पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, बोलते नहीं, ये कर लो, एक आवाज़ लगा दे नमाज पढ़ो चलो फिर जाके सो जाते हैं, ऐसे नहीं करना होता। आप देखिए कि जितना आप अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं ना, इतना ही अपने बच्चों का भी जोड़ें, वरना आपके घरों में कुछ सालों के बाद बदमजगी शुरू हो जाएगी। दीन के कामों में, अल्लाह के रास्तों में औलादों को साथ लेके चलें, यंगस्टर्स को साथ लेके चलें। आज हमारा हाल क्या है कि हम बच्चों को तो कुछ कहना पसंद ही नहीं करते, हर वक्त माजरत का अंदाज है, एक्सक्यूज मी बेटा, सॉरी बेटा, माफ कीजिए बेटा। भाई क्या माफ कीजिए, आपको पैदा कर लिया ये हमारा कसूर है, मत कीजिए, ये अच्छा रवैया नहीं। मैं किसी और से भी बात कर रही थी कि आज के दौर में पता नहीं क्यों अपोलोजेटिक रहते हैं बच्चे, माँ बाप बच्चों से, नहीं ना बच्चे इनसे देख लें बेटा, अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप कर लें। भाई किधर की ख्वाहिश है, चलो साथ, ये क्या बात है। हमने इतना ज्यादा बच्चों को, वो कहते हैं ना कि मिन्नतें करके तेरी तुझे हमने बिगाड़ दिया, कोई बच्चा इतना नहीं आता दुनिया में बिगड़ा हुआ। और आप देखें जितना हम इनके पीछे फिरते हैं इतनी इनकी गर्दनें ऊपर होती है। फिर वो कहते हैं ये अम्मी है तो पुराने ओल्ड मम्मी है, अबू भी कोई नई अम्मी ले आए तो शायद कोई अच्छी हो, है ना। तो बच्चों के साथ माजरत वाला अंदाज ना रखा करें, प्यार का, मोहब्बत का अंदाज रखें। इस तरह से करें कि आपके बच्चे जो हैं वो हकीकत में आपकी बात के साथ साथ अपने आप को लेकर चलें। और आप देखिए कि नमाज का बहुत ज्यादा मुकाम है, जो हम इस वक्त सिर्फ नहीं करेंगे, हर चीज को साथ लेते हुए बस इतना समझ लीजिए कि नमाज इंशाल्लाह आपको बुराइयों से रोकेगी। हो अल्लाही तुखशरून, उसकी तरफ जाना है। नमाज खड़ा होना सिखाती है अल्लाह के सामने। वली मन खाफ मकाम रब्बी ही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया अल्लाह ताला उसको दो जन्नतें देगा। तो हम सब खुद अपने आप को देखें, इसके लिए चंद टिप्स रख लें अपने जहन में। अकेले में पढ़नी है, फारिग जहन के साथ पढ़नी है, नमाज से पहले सेलफोन बंद कर देना है, किसी के साथ कोई मैसेजिंग नहीं करनी, 5-6 मिनट पहले से फारिग होकर वजू करके बैठना है, दिमाग पे ये नहीं कि हंडिया चूल्हे पे रखी हुई है उसका दम लगाना है और उधर ये करना है। बाद दफा अगले खाने की पूरी प्लानिंग जो होती है वो नमाज में कर लेते हैं। आपको पता है कि बाज लोग नमाज भी पढ़ते हैं, इसके बावजूद उनकी नमाज का सिर्फ 8वां हिस्सा, 4था हिस्सा, 3रा हिस्सा और दूसरा हिस्सा कबूल होता है। और हदीस में आता है कुछ तो ऐसे कि उनकी पूरी की पूरी नमाज पोटली के साथ बना के उनके मुँह पे मार दी जाती है। सूरत रूम आयत 31 में अल्लाह ताला कहते हैं अकीम उसलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम किया करो और मुशरिकों में ना हो जाओ। यानी नमाज ना पढ़ना तो शिर्क है ही, नमाज पढ़ के भी लोग उस नमाज में अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक करते हैं। तो नमाज जब जिंदा होगी तो इंशाल्लाह बहुत फायदा देगी, और अगर नमाज मुर्दा है तो बात नहीं है। आखिरी बात नमाज की करके आगे चलते हैं तकवा के असबाब में, और वो है सूरत फातिर की आयत नंबर 18। आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला कहते हैं इन्नमा तुन्ज़िरुल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिलगैबी वअक़ामुस्सलाता वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही वइलल्लाहिल मसीर। بس آپ کا ڈرانا ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جس شخص نے تزکیہ نفس کیا اس نے اپنے ہی لیے تزکیہ کیا اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا۔ پڑھیں گے تو اپنا فائدہ، نہیں پڑھیں گے تو اپنا نقصان۔ زندہ کرنی ہے انشاءاللہ، اس سال ہم کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ کرتے ہیں کہ ہم مل کے سب تراوی بھی پڑھیں، ضرور پڑھیں، دن میں دورہ قرآن اور شام کو تراوی میں ہم اپنی نمازوں کو زندہ کریں۔ آپ ہر دن ایک ٹپ لے لیں، بس ایک نماز کے بارے میں چیز ہے، نماز کی دعائیں سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو پلانز آپ کریں گے نا کہ ہم نے ایک ایک دن کو انشاءاللہ اچھا استعمال کر کے اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی ہر چیز کو بہترین چیزوں پہ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرے سبب پہ چلتے ہیں جو اصل میں اس وقت ہم سب کا فیوریٹ ہاٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے روزہ۔ سورۃ بقرہ آیت 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہے وہ آیت جس پہ کئی دن سے بات ہو رہی ہے، تقوی۔ تقوی حاصل ہوتا ہے روزے سے، کیسے؟ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ روزے سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے۔ چلیے آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، ابھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور بالفرض ابھی فوراً مغرب کی اذان کا وقت شروع ہو، ہم پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، وقت ہمارے سامنے شروع ہوا اور پھر ہم اس کے بعد بیٹھے ہی رہے، کیا ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ان سب سسٹرز میں سے کس نے نماز پڑھی اور کس نے نہیں پڑھی؟ پتہ لگ جاتا ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم چھپا سکیں۔ پھر آگے چلے، صدقہ، ہم میں سے کوئی کسی کو صدقہ دے، کسی کو بھی نہ بتائیں، کم از کم ایک بندے کو تو پتہ چلتا ہے نا جس کو ہم دیتے ہیں۔ اور روزہ کیسی عبادت ہے، آپ اور میں، اگر ابھی آپ نے مجھے پانی پیتے نہ دیکھا ہو اور میں ابھی آپ میں سے کسی کو نہیں دیکھ چکی، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے آج کس کا روزہ ہے کس کا نہیں۔ نفلی روزے بھی تو ہو سکتے ہیں نا۔ روزہ ایک اتنی خفیہ عبادت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اونلی فار یو، صرف آپ کے لیے۔ چند پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں کہ روزے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ روزہ خواہشات کو ختم کر دیتا ہے، سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ذہن میں جو سارا دن یہ آئیڈیاز اچھلتے رہتے ہیں نا، وہ کبھی کھانے کے ہوتے ہیں، چلو یہ کھاتے ہیں، چلو ادھر جاتے ہیں، چلو یہ کرتے ہیں، بازار جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور ہم اس آئیڈیا کو اس طرح ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ بس پکڑو اس کو اور لے کے چل پڑو۔ روزے کی حالت میں ہمارے اندر جتنے بھی جذبے اٹھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھہر جاؤ، بھی نہیں مغرب کے بعد، کھانے کی خواہش اٹھی تو کیا کھا لیتے فوراً اٹھ کے، مغرب کے بعد۔ کوئی جسمانی خواہش ابھرتی ہے کسی مرد کے دل میں، روزے کے بعد۔ کوئی اور خواہش آپ دیکھیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سیلف کنٹرول آئے گا۔ اور روزے کی جو تقوی کی جو ہم نے ڈیفینیشنز دیکھی ہیں، تو اس میں بہت بڑی ڈیفینیشن سیلف کنٹرول ہے، ڈھال ہے، بچاؤ والی صورت ہے۔ تو جو بندہ کثرت سے روزے رکھے گا نا، اس کو اپنے نفس پہ قابو پا جائے گا، اس کا نفس کمزور نہیں ہوگا۔ نفس اس کا، یعنی جو اس کا نفس مارا ہے، وہ کمزور ہوگا اور نفس لوامہ بڑھے گا۔ آپ سوچیے نا، اب ایک مثال دیتے ہیں، ایک لڑکی لڑکا ہے، ایک لڑکی کسی لڑکے کے پیچھے بڑھ جاتی ہے، ایسی طرح میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتی ہوں۔ اب لڑکی نان مسلم ہے، لڑکا مسلم ہے، وہ اس سے پیار محبت کی باتیں کر رہی ہے، کھڑے تھے 11 بج گئے، 12 بج گئے، 12:30 بجے، ایک دم وہ مرد لڑکا جب وہ گھڑی دیکھتا ہے، آئی ہیو ٹو گو، کیوں؟ ٹائم فار ظہر۔ کیا مطلب؟ وہ کہتے اس کام، رکو ادھر میں بھی آتا ہوں، کہ اوکے شاید کوئی ضروری اپائنمنٹ ہوگا۔ لڑکی کھڑی ہے، لڑکا چلا گیا۔ خیر وہ نماز پڑھ پڑھا کے مسجد سے بار فارغ ہو کے آدھے گھنٹے میں آ گیا۔ اب پھر وہ لڑکی ذرا اس سے پیار محبت کی بات کر رہی ہے، اس سے ذرا بات بڑھانا چاہ رہی ہے، وہ کہتے آئی ہیو ٹو گو، کیوں بھائی؟ ٹائم ٹو اثر۔ آپ بتائیے، جب وہ دوسری کے بعد آئے گا تو وہ کہے گی مٹی پاؤ، میں نے نہیں تمہیں لینا، ایسی ہے نا۔ اگر وہ عورت اس کی طرف بڑھنا ہی چاہتی ہو، کہے گی نا 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 نو، آئی ایم فاسٹنگ، کیا وہ تعلق نبھے گا؟ سوچیے، میں اکثر سوچتی ہوں، اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں رہتے ہوئے یہ عام بات ہے کہ جتنے لوگ لڑکیاں کنورٹ ہوتی ہیں، اس میں 80% کی دوستی مسلمان لڑکوں سے ہوتی ہے، اس کی بیس پہ ان کو اسلام ملتا ہے۔ اور میں ایسے کئی الحمدللہ، یعنی الحمدللہ تو کیا کہوں، یعنی ایسے کئی کیسز سامنے آئے ہیں کہ لڑکی نان مسلم تھی، مسلم لڑکا تھا، دوستی ہوئی، کچھ سال چلی، پھر شادی کے لیے وہ لڑکی، یعنی اس لڑکی کو تھوڑا اسلام مل گیا، یا ایک مجبوری تھی، کبھی گھر والوں کی ہوتی ہے کہ جی یہ مسلمان ہو، وہ لڑکی مسلمان ہوئی، پھر شادی ہوئی، اور 1.5-2.5 سال کے بعد طلاق۔ کیوں؟ کہتی آئی ڈونٹ لائک، ہی از ناٹ اے گڈ مسلم۔ वो अच्छी मुस्लिम, वो मर्द कहता है तुम बहुत ऊपर चली गई हो, तुम बहुत ज्यादा नेक हो गई हो, वो लड़के उनको छोड़ के चले जाते हैं। और मुझे इन सबसे ज्यादा सदमा जब इन मामलात को देखते हुए होता है कि जब किसी कन्वर्ट लड़की को कोई मुस्लिम लड़का फिर छोड़ देता है शादी के बाद, ये तो खुद ही उसको भेड़ों के चुज्जे में डालने वाली बात है ना। वो सिर्फ उस लड़के को बुरा नहीं कहेगी, वो उसे इस्लाम को भी बुरा कहेगी जिसके अंदर ये सब होता है। तो लिहाजा जब नमाज और रोजा अपनी असल रूह के साथ होता है तो हमारे नफ्स पे काबू होता है हमारा, और हम इस चीज पे अपने आप को लेते हैं। एक दूसरी चीज, पहली चीज तो सेल्फ कंट्रोल देखी ना जो हमें रोजा सिखाता है, दूसरी चीज आप देखिए कि रोजा रखने से बंदा सख्त जान होता है, होता कि नहीं होता। आप यहां से ये समझ लें कि जो माएं अपने बच्चों पे जरा सख्त हाथ रख के उनको पालती है ना, तो उनके बच्चे सख्त जान होते हैं। और जो माएं हर वक्त स्पून फीडिंग करती रहती है और उनको ये ना करो वो ना करो, तो वो बच्चे जरा सी हवा भी चलती है तो बीमार हो जाते हैं। रोजे के साथ हम इतने सख्त जान हो जाते हैं कि अपने आप को हम फिर स्ट्रांग फील करते हैं। को मिट्टी के बुत नहीं है कि पानी पड़ा और ऊपर मिट्टी का बुत पिघल गया। तो रोजा जो है ये इंसान के अंदर हकीकत में सख्त सख्ती पैदा करता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि रोजे के अंदर एक और चीज है, इसको आप यहां समझ लीजिए कि जब बंदा अल्लाह का हुक्म समझते हुए ये सारी चीजें छोड़ता है जो अपनी जगह हलाल थी, तो क्या कल हराम छोड़ना मुमकिन रहेगा? आप अगर कुरान पाक की आयत देख लें, ये आयतें जो सूरत 183 और 184, 85, 6 आखिरी आयतें, इसमें क्या रोजे का तस्करा है और आखिर में आता है कि वला ताकुल अमवाल अन्नास बिलबातिल, लोगों के माल बातिल तरीके से ना खाओ। क्या मतलब कि रोजे का असल मैसेज ये है कि तुम आम जिंदगी में हलाल से रुक रहे हो तो वहां तुम हराम से रुकोगे। तो लिहाजा ये हिकमतें हैं कि मुत्तकी बन जाता है इंसान रोजे के साथ। आप अपने जवान बच्चों की नजरें पाक करना चाहते हैं, रोजे रखाएं, कम खिलाएं। ये जितनी हैवी डाइट हमने दी और हर वक्त बर्गर और कभी सैंडविच और कभी बीफ और कभी कुछ, उससे भी उनकी शहवत बढ़ी। आज जितना ज्यादा सेक्सुअल एक्सपोजर है उसकी वजह खुराक भी है। रोजा रखने से कम अज कम जब जरा थोड़ा सा मीट का पहलू कम हुआ तो नजरें भी झुकी और इसके अंदर खराबी भी कम आई। लेकिन शर्त यह है कि रोजा सही रोजा हो, भूख वाला रोजा ना हो, पानी वाला ना हो। वो कहते हैं ना कि बाद लोगों ने रोजे को या रमजान को शाहरुस्याम की जगह शाहरुताम बनाया हुआ, सच है कि नहीं? मैं आपसे अगर पूछती ना कि आपने रोजों की तैयारियां कर ली हैं, तो आपने यही समझना था कि पकोड़े बना लिए हैं, समोसे बना लिए हैं, चने काट लिए हैं, यही सोचते हैं ना। क्या ये खाने पीने का महीना? नहीं, ये झूठ को छोड़ना है। अल्लाह के नबी ने कहा मल्लम यदा कौल जूरी वल अमल बिही, जो रोजा रख कर झूठ बोलना और इस पर अमल करना तरक ना करे, फलैसा लिल्लाह हाजत, फिर अल्लाह को इस चीज की कोई हाजत नहीं। फलैसा लिल्लाह हाजत किस बात में? किफी अल्लाह आई यदा ताम हु शराबो, तो इंशाल्लाह रोजा सही तरह से रखेंगे तो उसका असर आएगा। मत तरस खाएं, अकेला बच्चा है, रोजे लंबे हैं। आप सोचते हैं रोजा यहाँ का लंबा है तो नॉर्वे चले जाएं, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपसे भी लंबे हैं। पाकिस्तान चले जाएं, जितनी प्यास और जितना लगती है और जितना प्यास पसीना बहता है आपको, ये ठंडे रोजे तो कुछ कहेंगे भी नहीं। तो इंशाल्लाह आप इसको अपने ऊपर लेंगे। चौथी चीज पे चलते हैं, चौथा सबब जिससे तकवा मिलता है वो है सदका खैरात और जकात। इसकी दलील नोट कर लें, आयत 21 सूरत बकरा, या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। 21 सूरत बकरा की आयत है, यानी तकवा का हासिल करना अल्लाह की इबादत के जरिए से है और इबादत की बेहतरीन किस्म सदका खैरात है। आप इसको तकवा के साथ जरा रिलेट करिए, आप देखिए कि बेहतरीन सदका कौन सा होता है जो छुपा के किया जाए। आप अपने खानदानों में छोड़ें, अपने दोस्तों में किसी को कोई गिफ्ट भी देते हैं ना, अंदर से इतना सा गिफ्ट हो, इतना बड़ा डब्बा लगाते हैं, फिर उस पर और खूबसूरत रैपिंग पेपर लगाते हैं, फिर उस पर फूल लगाते हैं, फिर सजा के सबके सामने उनको जाके कहते हैं हैप्पी बर्थडे देते हैं ना। एक देना यह जो सबको दिखाए, और बाद लोग सिर्फ इसलिए भी देते हैं कि खाली हाथ जाते हुए शर्म आएगी, डब्बा नहीं, वो कहेंगे थैला नहीं लाए, लिफाफा नहीं लाए। इसके बरक्स आप देखिए इनफाक फीस भी ले ला चुपके से, एक हाथ से दिया तो दूसरे को खबर नहीं, दे के जतलाया नहीं, उम्मीद नहीं रखी। गिफ्ट दें तो फिर उम्मीद भी तो लग जाती है ना कि अब ये भी हमें देंगे। तो जिस तरह तकवा छुपा के नेकी करने का और गुनाह से बचने का नाम है, इसी तरह आप देखिए कि ये जो सदका खैरात है ये भी तो छुपा के किया जाता है। तो लिहाजा जब अल्लाह के लिए देंगे तो छुपा के देंगे, फिर कैमरे का रुख सामने करवा के गरीब औरतों को मशीनें नहीं बटेंगी, फिर उनको मुसारों के बीच में जाके चेक्स नहीं बांटे जाएंगे, तो छुपा के सदका देंगे तो अल्लाह से बदला मिलेगा। कितना मुश्किल है किसी को कुछ देना, लेकिन उसके लिए बहुत आसान है जिसको ये यकीन होता है कि मुझे इसके बाद इससे ज्यादा मिलना है। मसलन हम सबसे ज्यादा खुशी से किनको देते हैं? बैंकों को देते हैं और ज्वेलर्स को देते हैं। आपकी पे की का चेक सीधा बैंक में जाता है, आप क्यों देते हैं बैंक को? कभी सोचा आपने? बास जगहों में तो हाथ में पैसा आता ही नहीं है, बैंक टू बैंक ही वायर होता रहता है और हाथ में हम कार्ड लेके फिरते रहते हैं, नोट देखते भी नहीं लोग बास दफा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये $500 का चेक जो बैंक में गया है ना, जरूरत पड़ेगी निकलवा लेंगे, क्रेडिट कार्ड के जरिए यूज कर लेंगे, ये है ना। आपको शक पड़ जाए कि जो चेक आपका इस बैंक में गया है, जरूरत पड़ने पे आपको मिलना कोई नहीं, कभी देंगे, चोर आए जो मर्जी हम हाथ में लेके फिरेंगे, बस इसको रख लें। जब बैंक पे इतना यकीन है ना कि जब लेने जाएंगे मिलेगा, इतना यकीन अल्लाह पे हो जाएगा ना, तो आप अपने जरूरत का रखेंगे और बाकी अल्लाह के रास्तों में बांट देंगे, और अल्लाह को चुपके से कह देंगे कि मेरे रब मैंने तुझे दे दिया, तेरे नाम पे दिया, खुदा ना खास्ता अगर मेरे पे कोई बड़ा काम आ गया तो गैब से मेरी मदद करना। और यकीन करें ऐसी मिसालें आपने भी सुनी होंगी जिन औरतों का तवक्कुल होता है, चाहे वो बेवा हैं गरीब है, वो कहती है हमारे काम पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं। अल्लाह पर यकीन है ना, तो सदका खैरात कसरत से दें। आप इंशाल्लाह जितना सदका खैरात देंगे उतना ज्यादा आपके दिल में माल की मोहब्बत कम होगी और तकवा बढ़ेगा। सूरह तगाबुन की आयत 16 को भी आप जाके देखिएगा जरूर, उसमें भी यही पैगाम दिया गया कि वमै युकशुख नफ्सी ही फौलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तंग दिल जो होते हैं ना उनसे नेकियां भी बड़ी बड़ी नहीं होती, तो लिहाजा सदका खैरात करके अपने आप को अल्लाह से डरने वाला बनाना है। शायद मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी जिस दिन तकवा आएगा, क्योंकि तकवा एक दौलत है, तकवा एक नेमत है। जिसको अल्लाह ने तकवा दिया वो बच गया। आपको कभी किसी के ऊपर रश्क आया? मुझे तो बहुत लोगों पर आता है। यकीन करें ऐसे ऐसे साथी मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, जब कोई मौका है सबसे पहले उनके घर से पैसा आता है। हम लोगों ने कभी किसी से ना फंडिंग की बात की, ना कोई हमारे रस्मी फंड रेजिंग्स की, लेकिन अल्लाह के हुक्म से स्कूल चल रहे हैं नॉर्वे में, आप सबको थोड़ा बहुत जिक्र किया हुआ है कभी, और जिन हालात में वो स्कूल बना और लिया, शायद आपसे मुलाकात उस दौरान हुई है कि नहीं, ना इसमें कोई इस वक्त जरूरत है बात करने की, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ घर ऐसे हैं सबसे पहले उनके घर से पैसे आते हैं। इफ्तारी करा लें, कोई बड़ा प्रोग्राम करा लें, अभी हमने 29 को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 200-300 लोगों का तकरीबन अरेंजमेंट था खाने का, इतना पैसा, जगह लेना, सबसे पहले उनके घर से पैसा आता है। एक जेवर आया तो पता चलता है ये भी उनके घर का, दूसरा आता तो वो भी उनका। मैं सोचती हूँ कि इनसे इतना आसान क्यों है, क्योंकि एक नेकी दूसरी नेकी के लिए रास्ते खोल देती है। अगर दिल के अंदर से माल की मोहब्बत निकल गई ना, तकवाएगा, क्योंकि सिद्क है ना, सदका सिद्क से है, सच्चाई, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कहते हैं उसकी सच्चाई की दलील है कि हम अल्लाह के रास्ते में देने को आसान करते हैं। और बाद दफा पैसा नहीं होता हमारे हाथ में, मान लेते हैं हर एक औरत के पास कैश नहीं होता, लेकिन लाखों का जेवर मौजूद होता है, लेकिन हम उसको कहते हैं नहीं ये तो नहीं ना हो सकता, फीस नहीं दे सकते क्योंकि दी पैसे नहीं है हाथ। ये दिल की बातें होती हैं, दिल का अगर वो कहते हैं ना, जैसे मैं बात कर रही ना तो मेरे जहन में कोलेस्ट्रोल की मिसाल आ रही है, जब बहुत कोलेस्ट्रोल हो जाता है या आर्टरीज होती हैं वो थिन और थिक हो जाती है ना, तो ब्लड की सर्कुलेशन रुकती है, ऐसी होता है ना, पंपिंग करते हैं, कभी ब्लूमिंग करते हैं, कभी हार्ट को मतलब खोलते हैं, कुछ करते हैं। पैसा जब हमारे दिल के अंदर जम जाती है ना पैसे की मोहब्बत, तो ब्लॉकेज आ जाता है, फिर दिल घुटता है, फिर वो दिल के ऊपर दौरा पड़ता है। आप एक दफ़ा कह दें कि अल्लाह मैं तेरे लिए देने को तैयार हूँ जान से माल से, आप देखिए कि आपका दिल हल्का रहेगा। और वो सब कुछ दे के भी सोचते हैं हमने तो कुछ नहीं दिया। कई ऐसे लोग हैं कि मैंने कहती हूँ कि आप बाजी आपने सोच के दिया, मियाँ से पूछा, वो कुछ नहीं कहते, पता है आपको ये, देखें कुछ नहीं होता, खैर है हमने क्या करना है, ये है वो, अपनी जिंदगी में अपने घर घर लिख के देते हैं कि हमें हमारे बाद भी आपके अभी भी आपके। यानी ये जज्बे कहाँ आते हैं जिसको यकीन है कि हकीकत में वत तकु यौमन तुर जाओ नफी ही लल्ला। जिसको पता है कि आखिरत की बेल्ट पे मुझे ये सारे चेक्स वापस मिल जाने हैं, वो तो खुशी खुशी देगा। आपसे कोई कहे कि आप यहाँ से पाकिस्तान जा रही हैं तो सफर में पैसे साथ ना रखें, बता दें कितने पाकिस्तान में जाके ले लें, खुश होंगे कि नाराज? वो कि एयरपोर्ट से ले लीजिएगा, खुश होंगे हम लोग कि रिस्क रुका। तो अगर हमें कोई कह रहा है कि यहाँ से लेके उस तरफ जाएंगे, तो आप बताइए क्या हम इस पर खुश नहीं होंगे? تو اس کے لیے انسان اللہ سے مدد مانگے. پھر اگلا درجہ ہے حج کا. حج تو مہنگا ہی اتنا ہوتا ہے, پہلے ہی اس سے بندے کے دل کو ہاتھ پڑنے لگتا ہے, لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی حج کرتا ہے تو اس سے تقویٰ ملتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں حج مبرور, حج مبرور کا نام سنا نا, نیکیوں سے بھرا ہوا حج, اس کی تعریف کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا, جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا پھر اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں کی, یعنی اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی فرس کی اور ایسی بات نہ کہی, وہ وہاں سے ایسے پلٹ کے آتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا, گناہوں سے پاک کیا نا. اور حج بھی آپ دیکھیے کہ بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. سورۃ بقرہ 197 تو بڑی معروف ہے اس معاملے میں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, کچھ زیادہ سفر اختیار کیا کرو, یاد رکھو کہ بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے, اور عقل والوں مجھ سے ڈرو. وَتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, جو میں نے حج کے ضمن میں یہ آیتیں جب پڑھائی تھی سبیل الجنہ میں تب بھی دی تھی, لیکن ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی ہو. آپ دیکھیے کہ آپ سفر میں جاتے ہیں, ایک کرنسی سب جگہ چلتی ہے موسٹلی دنیا پوری میں, ڈالرز. آپ ڈالرز لے لیتے ہیں, وقت پڑنے پہ اس کو ریال میں چینج کر لیں, وقت پڑنے پہ اس کو درہم میں بدل لیں, پاکستانی روپیز میں بدل لیں, ہے وہ ڈالر, چینج ہوگا نا, کرنسی چینج ہوتی ہے. بالکل اسی طرح تقویٰ کی دولت اپنے ساتھ رکھیں گے نا, تو حج کے دوران کہیں وہ صبر میں بدل جائے گی جہاں لمبی لمبی لائنیں ہوں گی, کہیں شکر میں بدل جائے گی جہاں آپ کو کوئی اچھی جگہ مل جائے گی, کہیں کوئی آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے آپ اسے نہیں جھگڑیں گے بلکہ آپ اس کے ساتھ اپنے معاملے کو لیں گے. اگر تقویٰ ساتھ لے کے جائیں گے نا تو آپ کا حج بہترین حج ہوگا. اور انشاءاللہ اس حج کے بعد جب آپ منا کی 4-6 راتیں گزار چکے, وہ عرفات کے میدان میں فقیروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, جوتیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں عرفات سے منا جاتے جاتے, پیدل چلتے ہیں, وہ ساری اکڑ پھون پھانس سب یہاں رہ جاتی, وہ میچنگ جوتے. کبھی کسی کو اپنے حج پہ جاتے ہوئے میچنگ جوتے ساتھ جا رکھتے ہوئے دیکھا؟ اونچی ہیل والی جوتیاں میچنگ. مجھے یاد ہے ہم جب حج پہ گئے تو ہمارے ساتھ ہمارے کچھ فیملی کے لوگ تھے, تو ایک بڑی سیدھی سادھی بھولی بھالی ہماری پھپھو ہیں, وہ بھی ساتھ تھیں, بہت شوق تھا ان کو حج کا, اللہ تعالیٰ نے ان کا موقع بنا دیا, وہ گئیں. تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے, تو وہ تیاریاں جب کرتی تھیں تو روتی اور جوش, تو سفید جوڑا ان کا بالکل چکن کا نیا بڑا اچھا سوٹ سلایا, اے تو میں عید والے دن پانا ہے, حج کے لیے جانا ہے تو عید پہ پہننا ہے. تو وہ جو لوگ گئے تھے تو انہوں نے کہا پپھو کوئی نہیں پانا تھی اتنے, تھانوں گرمی نہیں لگنی. وہ نہیں, میں اللہ کے گھر جانا ہے, میں نے جوڑا نہیں پہننا. خیر جب ہم گئے اور ساتھ تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ عرفات کا دن کتنا سخت ہوتا ہے, اتنا رش تھا کہ ہمیں بس بھی نہیں ملی, بسیں رکی ہوتی ہیں, ہم عرفات سے منا پیدل آئے, 3-4 گھنٹے لگ گئے. اب جب اگلے دن حج, اب دیکھیے پسینے گرمی, اور اب اگلے دن رش اتنا ہے کہ مکہ اب ابھی جا نہیں سکتے. جب عید کا دن ہوا, پپو نیا جوڑا کدھر ہے, لے میں خراب کرنا تھے پاکے. تو اصل بات یہ ہے کہ بندے کی سب اکڑ ختم ہوتی ہے. مجھے اپنے والد کی بات یاد آتی ہے, تو وہ کسی کو دیکھتے تھے, وہ ہر سال حج میں جاتے ہیں, لیکن بڑے نفیس طبیعت کے تھے وہ بزرگ, اور بڑے شوقین تھے پہننے اڑنے کے. تو میرے والد اکثر کہتے تھے میں دیکھتا ہوں یہ اتنے حج کر رہے ہیں لیکن ان کے شوق نہیں ختم ہو رہے. حج کر کے بندہ آتا ہے تو وہ تو بالکل فقیر بن جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ حج بندے کو آخرت کا منظر دکھاتا ہے. سفید کپڑوں میں لپٹ کے جانا ہے, چند لوگوں کے کندھے پہ, یہاں بھی لوگ پھول پھینکتے ہیں, اس پہ بھی لوگ پھول پھینکتے ہیں. اگر بندہ حقیقت میں سفر کے حج کو صحیح سفر حج کے سفر کو شعور سے کر لے تو تقویٰ تو ملے گا کہ اب میں ان کے بغیر رہ سکتا ہوں. کوئی اپنا میچنگ بیڈ سیٹ لے کے جاتا ہے, پلو آپ کی پسند کا آپ کے ساتھ جاتا ہے, گھر میں یہ گدا یہ کمفرٹر یہ میچنگ یہ کچھ, وہاں کچھ نہیں, روڑی پہ سو جاتے ہیں. آپ سوئیں, جب صبح ہم سو گئے, آدھی رات کو ہم پہنچے مینا میں, جہاں جگہ ملی پڑی سو گئے, فجر کے لیے جب اٹھے آپ دیکھے, جب سورج نکلا پتا چلا ہمارے پاس کوڑے کی ڈھیری تھی. اس دن پتا چلا ہم ہیں کیا, ساری رات کوڑے کے پاس سو رہے. بندہ کوڑا بن جاتا ہے. اس لیے بچوں کو حج کرائیں, جوانوں کو کرائیں, مردوں کو کرائیں. اگر یہ تقویٰ کی کمی کی وجہ سے کچھ خرابیاں ہمیں ارد گرد دکھ رہی ہیں نا, تو اس کے لیے ان میں سے کوئی ایک عبادت ان سے کرا لیجئے, جس سے انشاءاللہ خیر ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے دل کھلیں گے اور اللہ کے حکم سے کھلیں گے. لیکن اگر ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم کرتے ہیں کہ 5-star ہوٹل پیکج, توحید ہوٹل میں جا رہے ہو کہ کس میں جا رہے ہو, تو پھر وہاں جا کے بھی لوگ اس طرح ہی کام کریں گے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ اس سال ہمیں تقویٰ دے دے. یہ تقویٰ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد انسان کا دل کھلتا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جس کو اللہ نے تقویٰ دے دیا نا, وہ تو کہہ لیجئے کہ اس کی لاٹری نکل آئی. چھٹی چیز, بس اب آگے پوائنٹس لکھاؤں گی, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. اور چھٹی چیز کیا ہے؟ سودی کاروبار کو چھوڑ دینا. یہ میں نہیں کہہ رہی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. سورۃ بقرہ آیت 278 میں آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, اگر تم مومن ہو تو باقی ماندہ سود چھوڑ دو. اور جنہوں نے سود پھر بھی نہیں چھوڑنا, اللہ تعالیٰ ان کو سورۃ بقرہ کی آیت 279 میں دھمکی دیتے ہیں, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ابھی بھی نہیں باز آئے, سود کو نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارے اصل مال تمہارے ہیں, نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم ہوگا. تو سود کا کام چھوڑنے سے تقویٰ تھا. اور میں نے, اللہ معاف کرے کسی کے بارے میں گمان بدگمانی سے ڈر لگتا ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے جب تک کاروبار یا لین دین میں حرام رہتا ہے نا, قرآن کے لیے دل نہیں کھلتا. ایسی ایسی سسٹرز ہیں کہ جو کئی سالوں سے امیدیں ہمیں دلاتی ہیں, بس اگلے سال میں نے آ جانا ہے کورس میں, اب میں نے سیریس ہو جانا ہے, اب ریگولر ہو جانا ہے, پھر غائب ہو جاتی ہیں, پھر کئی سال ڈیڑھ سال بعد شکل دکھاتی ہیں. پتہ کیا چلتا ہے کہ ابھی عقلے حلال نصیب نہیں ہوا. تو جتنا پیٹ میں حلال جائے گا, آپ کے بچے بھی آپ کی بات اتنی سنیں گے. آزما کے دیکھ لیں. آپ بعض دفعہ کہتے ہیں بڑا دل کرتا ہے نیکیاں کریں, کر کیوں نہیں پا رہے, پیٹ میں لکمے جا رہے ہیں. چیک کیجئے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بندے کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں رہے گی کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے. اور اس کے حرام نہ دعائیں قبول اور نہ انسان کی عبادات قبول. کوئی ہم سے کہے آپ کے 30 روزے بہت اچھے تھے, بہت جھاکے آپ, لیکن سوری یہ قبول نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کے پیٹ کے لکھ میں جو ایسے تھے, کیا کرے گا انسان. اس پہ ایک الگ پوری بات, بہت اللہ اکبر, یعنی اہم بات ہے. لیکن یقین کریں کہ یہ بات کرتا کوئی نہیں آج کے دور میں, کیونکہ لوگ سننا پسند نہیں کرتے. تو نہ کوئی پسند کرے, لیکن اللہ کے کلام میں انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ بھی سنیں گے جس میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ تعلق بے رسک, کہ ہمارا رزق کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے تاکہ ہمارے روزے قبول ہوں. عبادات کو ضائع کر دیتی ہیں یہ چیزیں. آخری چیز پہ چلتے ہیں جو انسان کو تقویٰ دیتی ہے, اور وہ ہے اللہ کے راستے میں محنت کرنا, جس کو آپ جہاد فی سبیل اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ دین سیکھنے کے لیے ہو, دین سکھانے کے لیے ہو, دین کو پھیلانے کے لیے ہو, اللہ کے دین کا کلمہ دوسروں کے دل میں اجاگر کرنے کے لیے ہو, آپ کو اس سے تقویٰ ملے گا. اس کی دلیل سورۃ توبہ کی آیت 44 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. آپ سے اجازت وہ لوگ نہیں طلب کرتے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ متقیوں کو خوب جانتا ہے. کیا پتہ چلا کہ آپ جتنے یہ کام کریں گے نا, اتنا آسان ہوگا. آپ کبھی لوگوں کی باتیں سنا کریں, ہائے بیچاری ارم, صبح بھی درس میں تھی, اب بھی درس میں. میں کہتی ہوں وہ بیچاری نہیں ہے, بہت چارہ ہے اس کے پاس. ہائے الفت بیچاری, ہائے عتیق بیچاری. میرے پاس تو بہت سارے بیچارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اگر آپ ان کو بیچارہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نظر سے بچائے. کیسے کرتے ہیں لوگ, آپ بتائیے. بچے ہیں ان کے, اللہ سلامت رکھے. شوہر ہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. گھر داری ہے, جان ہے اپنی, سب ہے نا. کیسے اللہ موقع دیتا ہے, کیونکہ سوچا ہوا کہ جانا ہے, صبح بھی ساتھ شام کو بھی ساتھ. اور ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ نہیں, ایک دفعہ کر لیا اب جائیں جی, یہ کیا مشکل میں ڈال دیا ہمیں, نہ خود چین نہ دوسرے کو چین. تو آپ پہلے اگلے دن صبح بھی نہیں جا سکیں گے. اللہ کا کام پارٹ ٹائم ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو اپنی زندگی کا خلاصہ بتا رہی ہوں, یہ بائی پارٹس کرنے والا یا پارٹ ٹائم کرنے والا کام ہی نہیں ہے. سٹیپس میں ٹھیک ہے, ابھی کچھ نہیں کرتے تھے, اب تھوڑا تھوڑا ان ہو گئے ہو گئے, لیکن جیسے اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے نا, اسمد خامی سے پاک ہے, اس طرح اللہ کا کام بھی خامی سے پاک ہے. آپ دیکھیں گے اینڈ تک وہی لوگ چلتے ہیں کہ جو ہر چیز کے اوپر اللہ کے دین کو قربانی دے, لیکن ان کا دل تو پوچھئے کیا. یہ تو میں نے ان کو کہا, ارم آپ کیا کہتی ہیں, آپ کو اپنے اوپر احمد ہے, آپ اپنے دل سے کیا سوچتی ہیں, ان سے شیئر کریں. شاید کسی اور کے بھی دل میں آپ کے لیے یہی سوال ہو.
अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है, सुकून होता है काम करके, और अल्लाह का सबसे ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला मौके देता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर काम हो जाता है, बच्चे को भी देखभाल हो जाती है, खाना भी बन जाता है, हर चीज़ हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है। और सबसे बड़ी बात है कि सुकून है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की राह के लिए कुछ काम तो कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया ऐसे ही गुजर जाएगी, टाइम ऐसे ही पास हो जाएगा और कोई किसी के काम नहीं आएगा, जो हम करेंगे तो वही हमारे लिए जो है आखिरत में काम आएगा। कोई खावन, कोई बच्चे जिनके हम एक्सक्यूजेस बना लें, ठीक है हमें उनकी जितने भी अल्लाह ताला ने एक काम का कहा है पूरा करना है उनके साथ साथ, लेकिन उनको एक्सक्यूजेस बनाती ही नहीं कि अल्लाह ताला मैं पहले बच्चों को देख लूँ, घर को देख लूँ, बाद में मैं आपका काम, वो टाइम वापस नहीं आएगा। तो जो मौका मिले खुशी से फौरन उसको ग्रैब करें और आगे बढ़ के अल्लाह के काम करें इंशाल्लाह। बस यही मैसेज है
इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस दुआ करें कि करवाता रहे, जाया होने लगे माल से बचाए, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर हम इस पे रुक जाएं और इनमें से एक एक के ऊपर काम करें, अपने लिए चेक करें मेरी क्या चीज कम है। अब आपको ये जो 6-7 असबाब लिखा है अपनी घर बैठ के खुद चेकलिस्ट बनाए, मेरे अंदर क्या कम है। बाद लोग नमाजों में बहुत अच्छे होते हैं, सदके में दिल घुटा हुआ, बस सदका बड़ी खुशी से देते हैं लेकिन अल्लाह के रास्तों में काम नहीं करते। तो इंशाल्लाह ताला हमने खुद को चखना है। आप देखिए कि असल तो मुश्किल ही ऑपरेशन है ना, लेकिन ऑपरेशन के बाद सेहत है। जितना ज़्यादा अल्लाह के रास्ते में हम अपनी अपनी खामियों को टटोलते हुए निकालते जाएंगे अल्लाह ताला साथ करेगा इंशाल्लाह ताला। ये टॉपिक तो यहाँ तक रोकेंगे, कोई सवाल या कोई बात अभी तक जो बात है उसमें से आप पूछना चाहें तो पूछें, नहीं पूछेंगे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे रुकेंगे इसके लिए, अब आगे आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।